ओम शांति। स्वस्थ जीवन शैली द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं? जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो हाथ उठाओ। वेरी गुड। आने वाली दुनिया में तो हम सदा स्वस्थ होंगे ही, किंतु वो सदा स्वस्थ बनने की विधि क्या सत्युग में जाके अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी? आप क्या समझते हैं, अपने आप आ जाएगी या यहां सीखनी पड़ेगी? यहां सीख, जैसे हम यहां पर ही ब्राह्मण से फरिश्ता और देवता भी यहीं बन के जाएंगे। फरिश्ता सत्युग में नहीं जाके बनेंगे, सत्युग में तो बनेंगे कि तू पहले उसकी पूरी ट्रेनिंग, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम परमो धर्म, यहां बनेंगे वहां जाके बनेंगे? यहां बनना होगा ना, तभी तो वहां जाके बनेंगे ना। वहां तो सिर्फ जन्म लेना है, प्रैक्टिकली उसका प्रैक्टिकल मूर्त अभी बनना पड़ेगा ना। इसी तरह से हम कहते हैं वहां पर एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहां होगी? यहां पर होगी ना। तो उसका प्रैक्टिकल, अभी हमको प्रैक्टिकल विधि क्या है, विधि से सिद्धि क्या है, उसको अभी जानना पड़ेगा। अगर हम आज की दुनिया में देखें, वैसे तो WHO की हेल्थ की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पर, मतलब पूरे शरीर के तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। कोई अगर आपको कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, इसको हम स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जब माता पिता से जन्म लेते हैं तब से ही हमारे माता पिता से हमें जीन्स मिलते हैं बीमारी के। हमारे जो माता पिता के अंदर बीमारी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो माता पिता में नहीं होती हैं, उनके भी जीन्स हमको मिलते हैं, प्लस उनका स्वभाव हमें मिलता है, उनकी उनका परिवेश हमें मिलता है, उनका संस्कार हमें मिलते हैं, उनसे रहन सहन, उनसे लालना पालना जो मिलती है, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी, क्योंकि सबके सब वो विकारी हैं। विकारी व्यवहार है आज के समय, विकारी आहार है और विकारी विहार है ना। टोटल हमारा इस समय वातावरण विकारी है, द्वापर युग से, कलयुग में तो और ज्यादा विकारी हो गया है ना। तो आज उसके कारण से हमारे, आज अगर हम अभी हम देखें, सर्वे हुआ एक दिल्ली में, चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई, 4 बड़ी सिटीज है भारत में, 21 साल से ऊपर के लोगों का सर्वे हुआ, तो पाया गया 100 वयस्क लोगों को, एडल्ट्स को 200 बीमारियां हैं। तो एवरेज हर एक को 2-2 बीमारी तो है शरीर की, सिर्फ बॉडी की है ना। जैसे 14% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 100 में से 30 लोग हार्ट की बीमारी से ही मरते हैं, नंबर 1 किलर है हार्ट डिजीज। ब्लड प्रेशर 30% लोगों को है, हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है। 40% लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, है ना। और 10% लोगों को सांस की बीमारियां हैं। लगभग 20% लोगों को हड्डियां खराब हैं, हड्डियां खराब हो गई, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, गर्दन खराब हो गई है। और हमारी बहनें माताएं तो 50 साल के ऊपर 50% बहनों को हड्डियां खराब है। 35% लोगों को एसिडिटी की बीमारी है। 10% लोगों को नाक कान गले की प्रॉब्लम है। 10% लोगों को हेडेक होता है, जैसे माइग्रेन है ना, टेंशन हेडेक होती है। 10% लोगों को ना कोई इन्फेक्शन होता है। 10% लोगों को हार्मोन्स की बीमारी है। 5% लोगों को कैंसर है। तो 100 में से 200 लोगों को बीमारी है। अगर आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको आप सभी को अपने अंदर 2-2 बीमारी दिखाई दे जाएंगी, है ना, शरीर की। अगर मानसिक रोग की बात करें तो मानसिक रोग भी आज हर एक आदमी को 6-6 हर एक को मिले हुए हैं। आपने सुना, जल्दी एक मानसिक रोग है, चिंता करना एक मानसिक रोग है, डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। 100 में से 20-25 हर चौथे आदमी को डिप्रेशन है आज, स्पेशली यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। नींद नहीं आती है, गुस्सा करना एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है, क्रोध है ना, जिसका हम मुरली में रोज सुनते रहते हैं। तो ये आज बहुत बड़े बड़े मानसिक रोग हैं ये ना, 6-6 मानसिक प्रॉब्लम सबके अंदर है। सामाजिक देखे तो समाज ही तो सबके सभी रोगी हैं, कोई किसी को पसंद नहीं करता है, कंपटीशन कंपैरिजन इतना अधिक है समाज में, इतनी आपस में प्यार खत्म हो गया है ना, एक दूसरे की केयर खत्म हो गई है। और आत्मिक आध्यात्मिक रोग किसको है, 800 करोड़ आत्मा में से सिर्फ 15 लाख को नहीं है, बाकी सबको आध्यात्मिक रोग है ना। कोई जानते ही नहीं हम कौन है, ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सब आध्यात्मिक रोग से बीमार है। और खुशी की जहां बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा है खुशी की और वो सारा विश्व मानता है। खुशी, हंसने को खुशी नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं मुरली में कहते हैं हंसना तो विकार है, आवाज से हंसना विकार है। खुशी क्या है, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस की एक परिभाषा है, इट इज एन इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन कंटेंटमेंट। अर्थात खुशी अंदर की बात है, अंदर की, आत्मा की अंदर की बात है। और ये कब आती है, जब आप संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, कंटेंटेड होते हैं, तो आप खुश हो सकते हैं। आज दुनिया में कोई खुश है क्या? आज सारी दुनिया में कोई खुश भी नहीं है और सारी दुनिया में कोई आज हेल्दी भी नहीं है, तो क्या करें, क्या करना चाहिए? जो मॉडर्न हेल्थ केयर है वो कैसी है, वो सिर्फ बॉडी का इलाज करती है, सिर्फ देह का इलाज करती है। कैंसर है तो कैंसर का ऑपरेशन कर देते हैं, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गए तो बाईपास कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, हाँ, या अगर गॉल बैडर में पथरी तो गॉल बैडर की पथरी को निकाल देते हैं, है ना, नहीं पथरी को गॉल बैडर निकाल देते हैं, अपेंडिक्स हो तो अपेंडिक्स निकाल देते हैं, घुटने तो घुटने रिप्लेस कर देते हैं। पर वो घुटने खराब क्यों हुए, रीढ़ की हड्डी खराब क्यों हुई, पित्त की थैली में पथरी क्यों बनी, हार्ट की आर्टरीज क्यों ब्लॉक हुई, ब्लड प्रेशर डायबिटीज क्यों हो गया, मोटापा क्यों हो गया, उसका निवारण क्या है, डिप्रेशन हुआ तो क्यों, नींद क्यों नहीं आ रही है, उसका कोई कारण। आज हमने एक गोली खा ली, नींद कर ली 8 घंटा 6 घंटा, उसके बाद अगले दिन फिर गोली खानी पड़ेगी। लोग आज एंजियोप्लास्टी कराते हैं, एक साल एंजियोप्लास्टी हुई, फिर दूसरी बार एंजियोप्लास्टी, फिर तीसरी बार एंजियोप्लास्टी, फिर चौथी बार एंजियोप्लास्टी, पांचवें साल बाईपास, और उसके बाद फिर हर साल एंजियोप्लास्टी, 10-10 एंजियोप्लास्टी हो जाती है, 2-2 बाईपास, 3-3 बाईपास हो जाते हैं, उसके बाद भी चल नहीं पाते लोग, तकलीफ होती है ना। तो विदेशों में तो आज प्रॉब्लम क्या हो गया, आज इतने हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, लोग 80 साल के हो गए हैं किंतु उनके हार्ट फेलियर हो गए। आज लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है, एक बीमारी छोड़ी दूसरी आ गई उससे भी भयानक। तो आज सारा विश्व त्रस्त है, तकलीफ में है, सब दुखी हैं, उसमें परमात्मा आते हैं। और इसके हमारी अप्रोच क्या है, जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं, कैसे आज दुनिया में जो आज मेडिकल साइंस इतनी महंगी हो गई है, अगर आपको दाखिल करना पड़े अहमदाबाद में आईसीयू में तो एक दिन का खर्चा आईसीयू का 1 लाख रुपया है, बॉम्बे में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया, अगर आपने मुश्किल से 20 लाख रुपये कमाए हो, अगर आपको 20 दिन आईसीयू में रहना पड़ जाए तो 20 लाख रुपये खर्च हो जाए, जितनी कमाई आपने की सारी उम्र में 20 दिन में खर्च हो जाए। तो आज इतनी इनसिक्योरिटी आदमी के पास आ गई है ना, कि तो इसी बीच में जब ये आज से कोई 25-24 साल पहले जब ये मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में उस समय हमेशा मेरे मन में भी ऐसे रहा करता था, हम इतने लोगों के एंजियोप्लास्टी करके भेजते हैं, बाईपास करके भेजते हैं, तो हम क्या करें, एंजियोप्लास्टी बंद हो जाती है, बाईपास फेल हो जाते हैं, और लोग कहते हैं डॉक्टर साहब पहली बार हमने एंजियोप्लास्टी कराई तो घर बेच के कराई, अभी आप कहते हैं बाईपास करा लो, हम क्या बेचें अभी। तो उसमें मेरे मन में अंदर से आती थी, मैं बाबा से अमृत वेले रूढ़ियान करता था, तो तब मुझे बहुत सारी बातें मन में टच होती थी, और तब मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे बातें। फिर हार्ट का प्रोग्राम बना और इसको करने के लिए मूर्त रूप देने के लिए फिर बाबा ने प्रेरणा दी कि आप माउंट आबू चले जाओ, क्योंकि मैं काफी समय से मेरे आने का दिल भी करता था यहाँ पर, तो सेवा भी करेंगे और ये हार्ट का प्रोग्राम भी करेंगे। किंतु हमने देखा इस हार्ट के प्रोग्राम के दौरान देखा कि हार्ट की बीमारी तो ठीक हुई, ब्लॉकेज तो ठीक हुई, किंतु ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, एसिडिटी, दमा, कैंसर भी लोगों के ठीक हो गए, ऐसे बहुत सारी बीमारी, लगभग सभी मन और तन की सभी बीमारियां ठीक हो गई। तो वही मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि आपको कैसे आप इस स्वस्थ जीवन शैली जो हम यूज करते हैं, जिसको हम 3 डायमेंशनल हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल भी कहते हैं, थ्री डायमेंशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि आज की हेल्थ तो सिर्फ हेल्थ जो है वो तो सिर्फ वन डायमेंशनल है, सिर्फ बॉडी की हेल्थ के बारे में डॉक्टर्स जानते हैं, ना मन की हेल्थ के बारे में जानते हैं, ना आत्मा की हेल्थ के बारे में जानते हैं। थ्री डायमेंशनल का अर्थ क्या है? आत्मा की भी हेल्थ, आत्मा भी हेल्दी हैप्पी रहे, मन भी हेल्दी और हैप्पी रहे, और आपका शरीर भी हेल्दी हैप्पी रहे। तो थ्री डायमेंशन हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल, कॉमन भाषा में उसको हम स्वस्थ जीवन शैली कह देते हैं। स्वस्थ माना, अब इसके हम इसके ऊपर सिद्धांत पे इसमें हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिद्धांत क्या है इस कॉन्सेप्ट का, क्या कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का, जिससे हम खाली शरीर की बीमारियां नहीं, मन की सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आपको संपूर्ण स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो सकता है, और आने वाली दुनिया में यही राज होगा, और द्वापर युग में शुरुआत भी इसी तरह से होगी कि जिससे हम कहते ना योगी ऐसे ही ठीक कर देते थे, है ना, हाथ बिना टच किए भी ठीक कर देते थे, ऐसे ही आत्मिक शक्ति से ठीक कर देते थे। तो कैसे हम इसको गहराई समझ जाएंगे, तो हम कैसे सभी रूहानी डॉक्टर्स बनके ना खाली अपने आप को ठीक कर पाएंगे बल्कि विश्व में सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं, एक सारे समाज को, हम आने वाली दुनिया को हम स्वस्थ और खुशनुमा बना सकते हैं। तो जो इसका कॉन्सेप्ट पहली जो बात है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात जो सिद्धांत है वह सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर जब आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो ये कोई डॉक्टर आपको हेल्थ नहीं दे सकता है। आपके माता पिता या भाई बहन या आपके साथी, आपका समाज आपको हेल्दी नहीं बना सकता है। इवन भगवान भी आपको हेल्दी नहीं बना सकता है, शिव बाबा भी नहीं बना सकता है, कौन बना सकता है? हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील प्लस डाई, दैट मीन्स हील डाई सेल्फ, अर्थात हील यूर सेल्फ। इस सारे विश्व में एक ही व्यक्ति है जो आपको हील कर सकता है, वो कौन है? कौन है? स्वयं आप हैं। डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, इंसान आपको मदद कर सकता है, वो भी अगर आपने कभी उनकी मदद की होगी तो आपने अगर एक कदम मदद की होगी तो वो भी आपको एक कदम मदद करेगा। कि तो शिव बाबा क्या करेगा, भगवान क्या करेगा? भगवान आपको, अगर आपने एक कदम बाबा की श्रीमत पर चले होंगे, ईश्वरीय मत पर चले होंगे, आपने हिम्मत रखी है, तो भगवान आपको हजार कदम बढ़ के आपको मदद देगा। ये इंसान और परमात्मा में फर्क है। एक कदम, हजार कदम क्या, पदम 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 गुना आपको सहायता मिलती है अगर आप हिम्मत करके परमात्मा के कहे हुए पे चलना शुरू करते हैं, तो आपको पदम गुणा मदद मिलती है। तो ये हमें समझ लेना है, इस सारी धरती पर एक ही मनुष्य है जो मुझे ठीक कर सकता है, वो कौन है? वो कौन है? स्वयं मैं हूं। बोलो, स्वयं कौन है? आपको ठीक कौन कर सकता है? ऐसे करके बताओ, मैं ही अपने आप को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं? डॉक्टर सिर्फ मुझे गाइड कर सकता है, इंसान मेरी मदद कर सकता है, रिश्तेदार मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे ठीक नहीं कर सकते, और भगवान क्या करेगा, मुझे हजार गुना मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं ठीक रास्ते पे चलूं, तो भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलूं, तो भगवान मेरी हजार गुना मदद करेगा। ठीक है, पहली बात। अब हम देखें दूसरी बात जो है, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, पर वो मैं ठीक करने वाला कौन है, उसमें से हीलर कौन है, और हील किसको करना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। वो हील करने वाला कौन है? मैंने कहा मुझे ठीक करना है, पर वो मैं कौन है? हेल्दी शब्द का हिंदी जो मीनिंग है वो क्या है? स्वस्थ, है ना। जैसे हमने कहा स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ शब्द दो शब्दों से बना है, स्व माने आत्मा, इनर सेल्फ अर्थात अंदर वाला मैं, और अस्थ माना स्थित या कॉन्शियस। तो स्वस्थ का जो हिंदी अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो है आत्मिक स्थिति में स्थित, अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य सदा आत्मिक स्थिति में स्थित है वो सदा स्वस्थ है, राइट? जब हम स्वस्थ जीवन शैली की बात करते हैं तो स्वस्थ जीवन शैली का मतलब क्या हुआ? आत्मिक स्थिति में स्थित जीवन शैली, अर्थात सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल। मुझे याद आता है जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जब हमारी मीटिंग्स होती थी 94-95 में, वो जिद करते थे मुझे कि राजयोग के साथ साथ आप, जब मुझे पहली बार 94 में लेटर आया वहां से हेल्थ मिनिस्ट्री से, तो 95 में भी लेटर आया था, तो हम मिनिस्ट्री में मीटिंग 96 में हुई 97 में हुई, तो मुझे फोर्स करते थे कि मैंने जगदीश भाई से 12 पॉइंट उन्होंने राजयोग के बारे पूछे थे, जगदीश भाई साहब से मैंने राजयोग के पूरे डिटेल 12 पॉइंट्स, क्या क्या राजयोग है, कैसे कैसे, क्या उसकी विधि है, वो हमने लिख के मिनिस्ट्री में भेजी। फिर उन्होंने मैं मीटिंग में बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं राजयोग तो करो पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग को हम ज्यादा नहीं जानते, आप साथ साथ में प्राणायाम भी डालो और 12 आसन भी डाल दो और नेचुरोपैथी भी कराना। तो मैंने कहा हम लोग तो सिर्फ राजयोग कराएंगे, हम ना नेचुरोपैथी कराएंगे, ना आसन कराएंगे, ना प्राणायाम कराएंगे, हम कुछ भी नहीं कराएंगे, हम सिर्फ राजयोग कराएंगे, डाइट एक्सरसाइज कराएंगे, शुद्ध सात्विक भोजन कराएंगे और शुद्ध सात्विक सैर कराएंगे, यही हम कराएंगे। नहीं पर हमें इस पे विश्वास नहीं है। मैंने कहा नहीं हम तो यही कराएंगे। तो पर वो एक मीटिंग फेल हो गई, फिर अगली बार फिर मीटिंग रखी गई, फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसे करो आपको हम अब आसन नहीं कराना, सिर्फ प्राणायाम तो जरूर कराना, प्राणायाम का बहुत फायदा होता है, और ऐसे ऐसे किया। तो फिर हेल्थ मिनिस्ट्री में मैं वापस आ गया, मैंने नहीं माना। फिर तीसरी बार मीटिंग बुलाई, तो तीसरी बार मीटिंग में कहा अच्छा डॉक्टर की, डॉक्टर कलाम साहब दिल्ली में थे ना, तो डीआरडी को चीफ थे, उनको पुश करते रहते थे बार बार कि आप ये प्रोग्राम अभी तक पास क्यों नहीं किया मिनिस्ट्री ने, तो फिर बार बार मीटिंग बुलाते थे, फिर हमें दिल्ली में बुलाते थे। तो फिर लास्ट में कहा अच्छा ऐसा करना आप प्राणायाम भी नहीं कराओ, आप नेचुरोपैथ भी मत रखो, आसन भी मत कराओ, कि तो शवासन जरूर कराना। तो हम बैठे थे, तो मैं तीन हम साइंटिस्ट बैठे थे सामने, उनकी टीम बैठी थी, 6-8 लोग बैठे थे उनके सामने, हमारे सामने जो होते ना पैनल बैठा हुआ था ना सामने, डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा शवासन जरूर कराओ, उसके डायरेक्टर ने कहा। तो मैंने अंदर सोचा शवासन में तो क्या होता है, ये भी मर गया, यहां से 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 मर गया, और हम यहां आ गए, चेतना हमारी यहां पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये तो उल्टा हो गया, शवासन तो उल्टा हो गया, हम तो कहते हैं मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा 7 एनर्जी से सारे शरीर को, शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हूं, मुझ आत्मा से 7 एनर्जी सारे शरीर को जागृत कर रही है, चला रही है, शवासन तो उसका उल्टा हो गया। तो मैंने कहा, कहते डॉक्टर गुप्ता आप बहुत जिद्दी हैं, आप यू आर वेरी स्टबर्न, आप हमारी एक बात भी नहीं मानते। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं किया, आपने पहले बीच में रोक दिया मुझे। मैंने कहा हम शवासन नहीं कराएंगे, हम शिवासन कराएंगे। वो कहते शिवासन क्या होता है? मैंने कहा अपने को आत्मा निश्चय कर, मतलब इंग्लिश में बताया, अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा शिव की निरंतर याद में रहना, इसको बोलते हैं शिवासन। वो सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक होता है। तो कहता है फिर इतना खुश हुआ वो व्यक्ति था ना जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा यू आर वंडरफुल, तो उसने फिर साइन करके पास कर दिया, इसी बात पर शिवासन के नाम पे पास किया। तो शिवासन हम सब कौन सा आसन करते हैं बताओ? नाम शवासन करते हैं, नाम प्राणायाम करते हैं, नाम कोई मुद्रा लगाते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं सभी? शिवासन करते हैं ना। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस टू इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस, और 24 आवर्स है हमारा मेडिटेशन। तो जो हमने जो देखा, तो पहली बात जो है वो यही है कि एक तो हमें अपने हाथ में जिम्मेवारी लेनी है, दूसरी बात क्या है, हीलर कौन है? आत्मा हीलर है, और हील किसको करना है? मन को और तन को करना है। आत्मा को किसको हील करना है? मन को हील करना है और शरीर को हील करना है। किसकी मदद से? परमात्मा की मदद से, शिवासन लगा करके आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के और परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़ करके, और फिर अपने मन को पॉजिटिव बनाना है और तन की 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित करना है, राइट? तो ये जो है उसका, और फिर इसकी थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। बेसिकली क्या है, आज के टाइम जैसे बताया वन डायमेंशनल है सिर्फ बॉडी की, किसी चाहे एमबीबीएस करो, चाहे एमडी करो, चाहे डीएम करो, चाहे एमसीएच करो, चाहे एमआरसीपी करो, एफआरसीपी करो, एफआरसीएस करो, कोई भी डिग्री दुनिया की ले लो आप, होम्योपैथी में चले जाओ, एलोपैथी में चले जाओ, आयुर्वेदा में चले जाओ, किसी भी पैथी में चले जाओ, मतलब एक इंसान को कंप्लीट इंसान के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है ना। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए हमें क्या चाहिए, अपने आप को इतना सशक्तिकरण करें, आत्मा को इतना सशक्तिकरण मिले कि हम खुद को हील कर सकें। वो हील कौन कर सकता है, वो पूछ की ट्रेनिंग कौन देता है हमें, परमात्मा स्वयं देते हैं, क्योंकि सशक्तिकरण जो होता है वो सत्य से होता है, और सत्य कौन है, सिर्फ परमात्मा सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है, अर्थात सदा ही सोल कॉन्शियस है, वो हमेशा विधेयी है, सदा शरीरी है, वो कभी भी देह अभिमान में आते ही नहीं। हम आत्माएं आधा कलप आत्मानी रहती हैं और आधा कलप बॉडी कॉन्शियस हो जाती है, देह अभिमानी बन जाते हैं, अर्थात हम आधा कलप सत्य हैं, आधा कलप असत्य हैं, किंतु परमात्मा सदा सत्य है, सदा ही सत्य है, माना सदा ही सोल कॉन्शियस है, सदा ही आत्म अभिमानी है, और शिव बाबा सदा ही सुंदर है, शिव बाबा सदा सुंदर है, मतलब सदा ही पवित्र है, एवर प्योर है, और किंतु हम आत्माएं आधा कलप सुंदर हैं, अर्थात प्योर हैं, और आधा कलप हम क्या है, श्याम हो जाती हैं, अर्थात विकारी बन जाती हैं। तो ऐसा परमात्मा, ऐसा शिव बाबा हमको ट्रेनिंग देता है, किसकी, पहले तीन तरह से देता है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग। पहले हमें सूचना देता है, फिर पढ़ाता है, और फिर हमें समझाता है, तीन तरह से। इन्फॉर्मेशन क्या है, एक कोर्स हमारा इन्फॉर्मेशन है, इसमें पहले तो परमात्मा क्या करता है, हमें हमारे हम एक तो पहले तो अपने बारे में हमको बताता है, रचता के बारे में, फिर रचना के बारे में, उसमें आत्मा बुद्धि, आत्मा मन और शरीर चारों की, रचता की नॉलेज, आत्मा की नॉलेज, मन क्या है और शरीर कैसे कार्य करता है, ये इस सब की तीनों चारों चीजों की एनर्जी हमें पूरी नॉलेज देता है, और एक अंदर घड़ी है हमारे हाइपोथैलेमस में, जो आत्मा की सीट, हाइपो दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम, राइट और लेफ्ट ब्रेन का कंट्रोल रूम क्या है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के मध्य में आत्मा का सीट है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे आत्मा की सीट है, जहां पर आत्मा रहती है अकाल तख्त, उस पर आत्मा आके बैठती है, और वो ऐसी जगह है, उसमें ऐसी सेल्स हैं कि उसको सेंस, हर चीज को सेंस करती है, आत्मा से जो एनर्जी निकलती है, ज्ञान की जो एनर्जी निकलती, सत्य ज्ञान माने सत्य की समझ, जो अभी बाबा ने पीछे भी कहा ना, कल की मुरली में बाबा ने कहा ना, कल जो महावाक्य चले बाबा के, कि ज्ञान माना क्या, समझ, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। तो परमात्मा ने हमें वो ज्ञान दिया, पहले इन्फॉर्मेशन, ये जो हम कोर्स कराते हैं ना, ये है इन्फॉर्मेशन, और मुरली है पढ़ाई, एजुकेशन, रोज की पढ़ाई हमारी मुरली है, और समझ, समझाता कैसे, काउंसलिंग कब करता है, अमृत वेले हमारी काउंसलिंग करता है, जब बाबा के पास रोज जाते हैं, तो बाबा से एक बात पूछते हैं, बाबा मुझे ये समझ नहीं आया, बाबा इसका मैं क्या करूं, मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूं, कैसे सॉल्यूशन करूं, ये मेरे सामने ये बात है, मेरा ये विकार, ये मेरा एक संस्कार खत्म ही नहीं हो रहा है, बाबा मेरे हार्ट की आर्टरीज बंद हो गई, मैं क्या करूं, बाबा मेरे को माइग्रेन हो गया, मैं क्या करूं, है ना, आप मुझे बताओ। तो बाबा से, बाबा हम समझाता है एक एक बात का, हर चीज का सोल्यूशन अमृत वेले देता है, तो ये बाबा हमको करता। और जब तीनों एनर्जी की हार्मनी हो जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मिक ऊर्जा, आत्मा के साथ ऊर्जाएं जो है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियां, और मन, मन के चार एस्पेक्ट हैं, उसको हम टीम कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। थॉट्स माना संकल्प या विचार, इमोशंस माना भावनाएं, और एटीट्यूड माना वृत्ति या दृष्टि या वृत्ति या नजरिया, और चौथा मेमोरीज माना स्मृतियां, यादें। तो चारों चीजें मन के अंदर आती हैं, और शरीर में हम चार बातें, चार चीजें, शरीर हमारे चार चीज से चलता है, एक तो भोजन से चलता है, भोजन हमारा कैसा हो, भोजन कैसा होना चाहिए, फिर दूसरी किस चीज किससे चलता है, हमारी एक्सरसाइज से चलता है, अगर हमारी सैर ठीक है, सैर करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। कितनी कोशिकाओं से बना है? 80,000 बिलियन, एक दो नहीं, बिलियन कितना होता है? 100 करोड़, 100 करोड़ का एक बिलियन होता है, तो कितना हो गया? 80,000 × 100, इतना करोड़, इतनी करोड़ कोशिकाओं से बना हुआ है, और हर कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती है। कितनी रिएक्शन होती है? 1 लाख। 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड हो गया ना, 1 सेकंड में इतनी देर में 1 लाख रिएक्शन हो जाए एक कोशिका में, तो 80,000 अरब कोशिकाओं में कितनी रिएक्शन होती होंगी, और उनके टॉक्सिन्स भी 1 सेकंड में निकल जाते हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारे शरीर में, इतनी आत्मा जब है शरीर में तो इतनी कैपेसिटी सारे शरीर के टॉक्सिन्स को साफ करने की। किंतु जब हम जल्दीबाजी करते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मैं जैसे कहता हूं ऐसे ही होना चाहिए, परफेक्शन का प्रेशर, तो हमारे शरीर में एक कोशिका में 1,20,000 रिएक्शन हो जाती है। चिंता करते हैं कैसे होगा, कैसे पूरा नहीं होगा, टाइम पे पूरा नहीं होगा, तो 1,40,000 रिएक्शन हो जाती है। इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं अंदर से, तो 1,60,000 रिएक्शन हो जाती है। गुस्सा करते हैं 1,80,000 रिएक्शन हो जाती है, और जोर से गुस्सा करो 2 लाख हो जाती है। और शरीर हमारा इन एक्स्ट्रा रिएक्शंस को, टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर सकता है। और जब सेल्स में इतनी कोशिकाओं में इतने जहर भर जाता है तो सेल्स बीमार हो जाती है। और हम में से हम सबके शरीर में 8 अंगों में से 1 अंग जन्म से कमजोर होता है। 8 अंगों में से, जैसे जन्म पत्री पर लिखा रहता था कि इस बच्चे का, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित रहेगा, पेट के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित होगा, ये बच्चा फेफड़ों के रोग से पीड़ित होगा। नक्षत्र देख के पंडित लिखते थे, होरोस्कोप देख के, है ना। तो ये पिछले जन्म कर्मों का हिसाब किताब होता है कि आत्मा 7 एनर्जी से 1 एनर्जी कम लेकर के आती है, और वो गर्म में वो शरीर ठीक से, वो अंग ठीक से डेवलप नहीं होता है, उसी अंग पे सारी बीमारियों का असर पड़ता है। किसी का हार्ट कमजोर है जन्म से ही, तो सारा उसकी सोच का, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी का असर हार्ट पे ही पड़ेगा, ठंडी गर्मी का असर हार्ट पे ही पड़ेगा, गलत खाएगा तो हार्ट पे असर होगा, नींद नहीं आएगी तो हार्ट पे असर पड़ेगा, गलत एक्सरसाइज हो जाएगी तो हार्ट पे असर पड़ेगा, गलत खान पान होगा हार्ट पे असर पड़ेगा, किसी का लंग्स कमजोर है तो लंग्स पे ज्यादा असर पड़ेगा, मौसम का असर, गलत खान पान का असर, टेंशन का असर, सारा फेफड़ों पे दमा हो जाएगा, बार बार दमा होगा। किसका पेट है तो पेट पे ही होगा, किसी को माइग्रेन तो माइग्रेन बार बार हो जाएगा, है ना, होता ही नहीं होता ऐसे। फिर सभी अंग तो आपस में कनेक्टेड है, फिर जब एक अंग खराब होता है उससे बाकी अंग भी साथ साथ, जैसे एक पेटी में सेब एक खराब हो जाए तो क्या होता है, आसपास के सेब भी खराब होने लगते हैं। सेम वे बॉडी आपस में सारी कनेक्टेड है, आपस में हर अंग का एक दूसरे से लेन देन है, तो सारे अंग खराब हो जाते हैं। तो ये जब अप्रोच है तो हमें समझना है कि हमें तो अभी जो है, अभी हम क्या करें। अब जो एक इंसान तीनों एनर्जी से बना हुआ है, और हेल्थ किसे कहते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वास्थ्य में तीनों एनर्जी की हार्मनी है, तीनों स्पिरिचुअल एनर्जी, मानसिक एनर्जी और शरीर की एनर्जी, तीनों का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, और ये डायनेमिक प्रोसेस है, कभी भी खराब हो सकता है। आत्मिक ऊर्जा ऐसे नहीं कि अलग से है, आत्मा से एनर्जी निकल रही है, बॉडी की हर कोशिका में जा रही है, सातों एनर्जी बॉडी की हर कोशिका में जा रही है। 80,000 अरब कोशिकाएं को आत्मा चला रही सातों एनर्जी से, पर जा किसके से रही है, मन के माध्यम से जा रही है। अगर हमारी टीम नेगेटिव है, हमारे विचार हमेशा नेगेटिव चलाने की हमको आदत पड़ गई है, भावनाएं नेगेटिव हो गई है, सर्व के प्रति भावनाएं, किसके प्रति कैसी भावना, किसके प्रति लगाव की भावना है, झुकाव की भावना है, किसी के प्रति टकराव की भावना है, तो हमारी टीम नेगेटिव हो गई, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो गया है, दृष्टिकोण हमारा आज कैसा हो गया, सभी का दूसरे के प्रति अपना स्वार्थी एटीट्यूड हो गया है ना, रूहानी एटीट्यूड नहीं है, हम स्वार्थ, जिसके प्रति हमारा मोह है, लगाव, झुकाव, प्रभाव है, उसके तो हम जान दे देते हैं, जिससे टकराव हो, बेशक मर जाए, उसकी कोई चिंता ही नहीं करते, उसकी कोई परवाह ही नहीं करते हैं, तो हमारा एटीट्यूड खराब हो गया। हमारी मेमोरीज कौन सी हैं, हमारी रिकॉर्डिंग, जो भी हमने गलत रिकॉर्ड किया है, जो गलत देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड चित्त में रिकॉर्ड होता है। चित्त इस जन्म का होता है, सब कॉन्शियस माइंड इस जन्म का होता है, पिछले जन्मों का अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसी में सारे पाप कर्म भस्म रहते हैं। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले 62 जन्म के पाप कर्म उसमें जमा है, और 63 जन्म के पाप कर्म इस सब कॉन्शियस माइंड में जमा है। इसलिए और दोनों माइंड मिलकर 90% मन हो जाता है, तो सारे पाप कर्म हमारे इस जन्म में जमा है। हम चाहते हैं रोज अमृत वेला उठते हैं, अपने संकल्प करते हैं कि आज हम ऐसे ऐसे दिनचर्या बनाएंगे, और होता क्या है, हमसे क्या होता है, रात में चार्ट चेक करते क्या होता है, 10% ही फॉलो हो पाता है, 15-20% ही फॉलो हो पाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ गलत भरा हुआ है, पाप कर्म भरे हैं, वो हमें करने नहीं देते हैं, निरंतर अटेंशन में रहने नहीं देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड हमें काम करने नहीं देता है। जबकि फरिश्ते जो होते हैं, फरिश्तों का 100% मन कॉन्शियस होता है, फरिश्तों में सबकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता है, अनकॉन्शियस माइंड भी नहीं होता है, इसलिए उनकी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। तो हमें क्या करना है, हमको राजयोग के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड को खत्म कर देना है। विक्रम विनाश करने का मतलब क्या है, सबकॉन्शियस माइंड को खत्म कर देना, अनकॉन्शियस माइंड को खत्म कर देना, उसी में विक्रम भरे हुए हैं, और 100% कॉन्शियस माइंड हो जाना। जब हमारा चेतन मन सारा हो जाएगा, तो हमारी 100% कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी, फिर जो हम सोचेंगे वही करेंगे। अभी हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। जब हमारा सोचना, बोलना और रहना, करना एक समान हो जाएगा, तो हम फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते से देवता बन जाएंगे, फिर हमारा हर संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो अभी जो आयुर्वेद ने, जैसे हम कहें द्वापर युग में, जब हम थे द्वापर युग में, हमारा सब कुछ कैसा था, हम हेल्दी हैप्पी थे, सदाई निरोगी काया थी, किंतु द्वापर युग जब आया तो विकार आए। पहले तो बॉडी कॉन्शियसनेस देहभान आया, उसके कारण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आया, और उसके कारण हमारे विकार आए, और विकार हमारा व्यवहार विकारी हो गया। विकार व्यवहार माना कंडक्ट, आपस में व्यवहार, वो हमारा व्यवहार विकारी हो गया, हमारा आहार भी विकारी हो गया, क्योंकि मूड से फूड बनता है। जैसे बाबा ने संडे की मूड ली थी ना, संडे को बाबा ने क्या कहा, बाबा क्या हमें क्या बना देते हैं, हमारा होली मूड बना देते हैं, होली मूड, लाइट मूड और हैप्पी मूड बना देते हैं। बाबा क्या करने आए, हमारे मूड को क्या बनाने आए, होली मूड बना, पवित्र मूड बनाने आए, और लाइट मूड बनाने आए, और हैप्पी मूड बनाने आए। तो मूड से फूड कनेक्शन होता है, जैसा आपका मूड वैसा आपका फूड। अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आप गलत खाना खाएंगे, स्वाद के वश होकर खाना खाएंगे, भोगी बन के खाना खाएंगे। अगर आपका मूड है, हैप्पी है, लाइट है, होली है, तो आप जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है वो आप खाएंगे, शुद्ध सात्विक फूड खाएंगे। अगर आपके आपका मूड ठीक नहीं है, रॉन्ग मूड है, विकारी मूड है, गुस्से में है, जल्दी में है, चिंता में है, उदास है, तो फिर वो उसका अपोजिट फूड खाएंगे। मन में कड़वाहट फील हो रही है तो आप कैसा फूड खाएंगे, मीठा खाने को दिल करेगा। आप अंदर से बहुत ड्राई महसूस कर रहे हैं, खुशकी महसूस हो रही है, कोई मेरे को मेरे से बात ही नहीं करता है, सब मेरे को निगलेक्ट करते हैं, तो क्या करेगा, तला हुआ खाने को दिल करेगा, पकौड़े खाने को दिल करेगा, पराठा खाने को दिल करेगा, पूरी खाने को दिल करेगा, है ना। और अगर आप बहुत बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो हॉट एंड स्पाइसी चटपटा खाने को दिल करेगा। ऐसे 100 से ज्यादा मूड स्टडी हुए साइंस में, और हमारे मूड ही हमारा फूड बनाते हैं, राइट। तो मूड सो फूड, और फिर उसी आधार पे हम विहार भी हमारा होता है। तो जब लगभग 2350 साल पहले आयुर्वेद का जन्म हुआ, उसमें जो चरक थे, और उससे पहले दूसरे थे जो चरक से पहले थे, तो उन्होंने क्या कहा कि तीन कारण है बीमारी के, हर बीमारी के, एक तो हमारा व्यवहार, एक आहार और एक विहार। ये तीन ही, क्योंकि उसमें बीमारियां आ रही थी, व्यवहार लोगों का बदल रहा था, विकारी व्यवहार हो रहा था, विकारी आहार हो रहा था, विकारी विहार हो रहा था। लोग काम क्रोध लोमो अहंकार के वश होकर के व्यवहार करते थे, आहार वैसे ही खाते थे, गलत व्यवहार, गलत आहार खाना शुरू किया था, और गलत विहार इनसिक्योरिटी पैदा होगी, मकानों को बंद कर दिया था, दरवाजे ताले बनने लगे थे और दरवाजे बंद करने लगे थे, किले बनने लगे थे और वहां रक्षा के लिए छोटे छोटे दरवाजे बनाने लगे थे, हवा का अंदर आना जाना बंद हो गया था, तो बीमारियां शुरू हुई थी, उसमें आयुर्वेद का जन्म हुआ। तो यही कहा गया, अगर व्यवहार आप बदल लो अपना, कोई बीमारी हो चाहे हार्ट की हो चाहे कोई बीमारी भी हो, आपको शरीर की बीमारी चाहे मन की बीमारी, तो अपना व्यवहार बदल लो, अपना आहार बदल लो, अपना विहार माना जहां रहते उसमें ऑक्सीजन अच्छे से आए, तो आपकी सब बीमारी ठीक हो जाएंगी। इसी समय ग्रीस में एक साइंटिस्ट थे एस्क्लेपियस, उन्होंने कहा कि तीन कारण से सब बीमारियां होती हैं। लगभग 30 साल के बाद उन्होंने कहा माइंड फूड एंड एयर, मन और फूड आहार भोजन और एयर वायु, ये तीन ही कारण है इंसान को ठीक करने के और बीमार करने के। तो ये तीन कारणों को हमें ठीक करना है। तो अभी हम देखते हैं कि राजयोग से हम कैसे इसको ठीक करें। स्वस्थ माना स्वस्थ, हमने जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्दी माना हील दाई सेल्फ, मुझे अपने आप को ठीक करना है। दूसरी बात क्या है, स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। तो अब हमें क्या करना है, एक अब हमारे पास आत्मा तो है, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरे पास, इसके साथ आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां बुद्धि मन और संस्कार। अब मुझे इस राजयोग की शक्ति से, अपने को आत्मा समझ परमात्मा की शिव की याद से, इस सत्य ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया, जैसे कल बाबा ने कहा बाबा से जो सुनते हैं, बाबा डायरेक्ट बाप से सुनने वाला ही कौन है, ज्ञानी है, है ना? मनुष्य मनुष्य को ज्ञानी नहीं बना सकते, सत्य सिर्फ एक परमात्मा परम सत्य है और वो सदा सत्य ही सुनाते हैं। अगर मैं रोज आधा किलो दूध पीता हूं तो मेरी हड्डियां मजबूत रहती हैं, मेरे शरीर में ताकत आती है, प्रोटीन मिलता है, कई सारे विटामिन मिलते हैं, कैल्शियम मिलता है, किंतु उसी दूध में मैं रोज एक बूंद जहर मिला के पीना शुरू करूं तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, ताकत आएगी, ताकत आएगी, कमजोरी आएगी। ऐसे ही परमात्मा की श्रीमत अर्थात मुरली में दुनिया का कुछ और किसी और का बताया हुआ, श्रीमत में ईश्वरीय मत में थोड़ी सी परमत, थोड़ी सी मनमत मिला देते हैं तो वो दूध जो हमने पी रहे हैं, ज्ञान रूपी दूध पी रहे हैं रोज, वो हमें कमजोर, हम कमजोर होते जाएंगे। 20 साल 30 साल पीने के बाद भी, 40 50 साल पीने के बाद भी हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी, रूहानी ताकत नहीं होगी, योग बल की ताकत नहीं होगी, जिससे हम अपने शरीर की समस्याओं को, मन की समस्याओं को और आने वाले साथ वाले जिसके साथ रहते हैं उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज यही समस्या देखने में आ रही है। हम राजयोग तो कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें मिक्स कर दी हमने, परमात्मा के कहे ज्ञान में बहुत सारी बातें मिक्स हो गई हैं। आज हमारे बहुत भाई बहन राजयोग के साथ हठयोग भी करते हैं। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, जब मैंने बात की ना अभी जब रिसर्च शुरू हुई थी तो हमने हठयोग क्यों मना किया, क्योंकि हठयोग पे रिसर्च आ चुकी है, प्राणायाम करने से आपका क्रोध बढ़ता है, ऐसी कई रिसर्च आ चुकी है। इससे जितने भी सन्यासी होते हैं वो सबके सब बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं। अगर आपका क्रोध बढ़ रहा है तो आप हेल्दी होंगे कि बीमार होंगे, एक तरफ राजयोग कर रहे हैं एक तरफ क्रोध बढ़ाने वाली चीज भी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कपाल भाती सब दूसरी चीजें कर रहे, क्या करें? कई लोग आसन में लगे हुए हैं, कई लोग मुद्राओं में लगे हुए हैं, है ना, मुद्रा। हमारा योग क्या है, राजयोग क्या है, हमारा राजयोग क्या है, नॉलेज को अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ। राजयोग क्या है, रियलाइजिंग द ट्रूथ, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, बीइंग द ट्रूथ, सत्य को अनुभव करना, सत्य को जीना, सत्य बनना, ये राजयोग है। सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा में दो बातें हैं, सत्य सदा ही होता है, सत्य कभी विनाश को नहीं पाता, सदा सदा माना वो जन्म मरण से परे है, वो सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारे अंदर सत्य क्या है, देह परिवर्तनशील है, एक दिन जन्म होता है एक दिन मर जाती है, रोल बदलते रहते हैं, आत्मा सत्य है, आत्मा जन्म मरण से परे है, आत्मा कभी परिवर्तन नहीं, उसका रूप वैसा ही रहता है सदाई। हाँ, उसकी मर्ज और इमर्ज का खेल होता है ना, उसके सत्व प्रधान संस्कार मर्ज हो जाते हैं, तमो प्रधान इमर्ज हो जाते हैं, अब वापस सत्व प्रधान इमर्ज हो जाएंगे और तमो प्रधान मर्ज हो जाएंगे, किंतु आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, और ये संसार रूपी ड्रामा सत्य है, इसमें भी कर्म सत्य है। हमने जो कर्म कर दिया वो माफ नहीं हो सकता है। राजयोग से क्या फायदा है? आप कहेंगे आप राजयोग से कर्म माफ नहीं हो सकता, मैंने कर्म किया तो विकर्म हमने कर लिया, माफ तो नहीं होगा, क्या क्या माफ होगा फिर? राजयोग से क्या फायदा है? अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने 100 साल पहले किसी से 10 रुपया उधार लिया था, और 100 साल के बाद वही मेरा दोस्त जिससे 10 रुपया उधार लिया मैं वापस नहीं किया, इस जन्म में मेरा कोई संबंधी बन के आ गया, माता पिता या भाई बहन या पति पत्नी या बच्चा बन के आ गया या बिजनेस पार्टनर बन के आ गया, तो 100 साल के बाद मुझे उसका 10 रुपया तो वापस करना ही पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज कितना हो जाएगा 100 साल का? ध्यान से सुनना, 4,18,35,040 रुपया हो जाएगा, सुना? तो इतना ब्याज हो जाएगा। ये है कर्मों का हिसाब किताब। अगर आपने किसी को 2 बार उसकी इंसल्ट की थी पिछले जन्म में, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी, सोचो जरा। किसी को आपने 2 बार गाली दी थी, इस जन्म में कितनी बार गाली देगा वो आपको? और आपको चुपचाप सहनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, और वो कोई दूर नहीं होगा, आपके आसपास होगा, आपके सेंटर में ही होगा, आपके घर में ही होगा, लौकिक चाहे अलौकिक घर में ही होगा, वो सहन करना पड़ेगा। अगर आप उसको इस समझ से आप पचा सकते हो, समझ सकते हो, तो सहन करके संभालोगे, अदरवाइज वो बीमारी का रूप लेगा, चाहे मन की बीमारी चाहे तन की बीमारी का रूप लेगा। तो ये बाबा ने हमें ज्ञान दिया ABCD, मैं इसको ABCD कहता, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो सारा दिन इस चलते फिरते उठते बैठते इसी को अनुभव करते रहना, इसको जीना, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध, एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना, जो कल बाबा ने कहा, एक एक गुण के अनुभव की अथॉरिटी बनना, एक ज्ञान के पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बनना। तो ये बुद्धि, सबसे पहले मुझे क्या, बुद्धि को परिवर्तन करना पड़ेगा। बुद्धि सत्व प्रधान, बुद्धि मन संस्कार, क्योंकि तीनों में ये हमारा सूक्ष्म शरीर किससे बनता है, 3 चीज से बनता है, बुद्धि से, ये तो स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना है। पहले बीमारी सूक्ष्म शरीर में आती है, तो सूक्ष्म शरीर को पहले सूक्ष्म शरीर को परिवर्तन करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना हुआ, बुद्धि से बना हुआ है, पहली चीज बुद्धि है, दूसरा मन है, तीसरा संस्कार है। अगर मैं अपने सूक्ष्म शरीर को लाइट का बना दूं, उसमें सारे एनर्जी ब्लॉकेज खत्म कर दूं, तो आत्मा से जो करंट, आत्मा जो परमात्मा से करंट खींचती है, उसको मन से जाना है, मन से। तो बेसिकली सूक्ष्म शरीर क्या है, मन है। अगर मेरा मन पॉजिटिव हो जाए, मेरी टीम पॉजिटिव हो जाएगी, तो एनर्जी उस अंग में, हार्ट में, हार्ट मेरी आर्टरीज ब्लॉक होगी, हार्ट में जा पाएगी। मेरा लीवर कमजोर हो गया, लीवर में जा पाएगी। मेरे पेट में अल्सर बन गया, अल्सर में जा पाएगी। आंतों में मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, वो ठीक हो जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। मेरे घुटने खराब है, वो ठीक हो जाएंगे। मेरे को दमे की बीमारी, दमा ठीक हो जाएगा। मेरे को माइग्रेन हो रखा, माइग्रेन ठीक हो जाएगा। मेरे को डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी टीम पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मुझे पहले सूक्ष्म शरीर को पॉजिटिव बनाना है। तो सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है? तो हमारा जो बुद्धि को हमें परिवर्तन कैसे करें, पहले क्योंकि हमारा बुद्धि ही होगा ना, तो पहले हम जब अपने को आत्मा समझ के बार बार, जितना हम बार बार अपने दिल, बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहला दिल है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस जिस चेतना भी कहते हैं हिंदी में। तो जितना हम इस चेतना में, अपने दिल में, देह, देह के सब संबंध, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव ये 5 विकार हैं, देह के संस्कार वो मन में होते हैं। तो ये देह, देह के संबंध संपर्क और देह के पदार्थ और देह के स्वभाव, ये 5 विकार ये हमारे दिल में बैठ जाते हैं, चेतना में घुस जाते हैं। उसके कारण हमारा विवेक क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। विवेक हमारा सत्य को परखने की शक्ति कंफ्यूज हो जाती है, उससे हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, और हमारा चित्त चंचल हो जाता है, चंचल और अशांत और बेचैन हो जाता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो तमो प्रधान स्मृतियां की फाइलों इमर्ज हो जाती है, उस स्मृतियों के इमर्ज होने से हमारे गलत संकल्प उठने लगते हैं, गलत माना विकारी संकल्प उठने लगते हैं, और विकारी संकल्प जब यहां उठते हैं तो गलत केमिकल्स यहां बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स और दूसरे हार्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल से, और उसका असर हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे होता है और उससे वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। और एक यहां पर एक तार होती है जिसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, तो सारी बॉडी में स्ट्रेस तनाव का असर होने लगता है, नींद आनी बंद हो जाती है, बीमारी आने लगी शुरू हो जाती है। इसकी बजाय अगर हम अपने को अगर हम बुद्धि में मतलब चेतना में कॉन्शियसनेस में अगर बाबा को भर लें और बाबा और सिर्फ साथ में उन सत्य ज्ञान को भर लें, उसमें कुछ मिक्स ना करें, 1% भी हम मनमत या परमत मिक्स ना करें, मुरली को अपने जीवन का आधार बना लें, मुरली को ही बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, उसकी गहराई में जाएं, उसको बार बार अध्ययन करके एक एक संकल्प एक एक संबंध की अनुभूति बाप से करें और ड्रामा से साक्षी हो जाएं। अगर कोई मुझे दुख भी दे रहा है, राजयोग से क्या फायदा होगा कि राजयोग से ब्याज माफ हो जाता है, 10 रुपया उधार लिया 10 रुपया देना ही पड़ता है, ब्याज माफ हो जाता है, 2 बार अगर इंसर्ट की तो 2 बार इंसर्ट होगी किंतु 200 बार इंसर्ट नहीं होगी, 2 बार गाली दी तो 2 बार गाली तो खानी पड़ेगी किंतु 200 बार गाली नहीं खानी पड़ेगी। तो ऐसे इसका मतलब विक्रम विनाश होना, ठीक है, ये विक्रम विनाश होता है, पूरा खत्म नहीं हो सकता है, मूलधन तो देना ही पड़ेगा, इसलिए आपने देखा वो बड़े बड़े भी हमारे सभी को बीमारियां आती हैं किंतु बीमारी सूली के समान आती है और कांटा बन जाती है और कांटा भी फूल बन जाती है, होता है ना, बड़ों को हमारे दादियों को सबको होता है ना, किंतु 63 जन्म में हमने क्या क्या किया है वो सब सामने आता है, किंतु हम जब बुद्धि को, क्योंकि उनकी बुद्धि सत्व प्रधान बन चुकी है, ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ किसका, पहले विनाश का, पहले तो शिव ने अपना साक्षात्कार कराया, फिर विष्णु का हुआ और फिर साक्षात्कार हुआ विनाश का और फिर स्वर्ग का, आने वाले हेवन का और तत्त्वम, है ना, तो आने वाली दुनिया कैसी होगी, तो बाबा की बुद्धि एकदम परिवर्तन हो गई और इसलिए तुरंत कनेक्शन एकदम ऐसा हो गया, बुद्धि योग है ना, बाबा उस शिव बुद्धि माना बाबा का दिल सच्चा और साफ हो गया, शिव बाबा उसमें आके बैठ गया और वो पहले से बाबा ये कार्य कर रहे थे, 36 से पहले ही बाबा ये कार्य कर रहे थे जो अभी हम कर रहे हैं, अभी तक अपनी बुद्धि को रगड़ रहे हैं ना, ज्ञान साबुन से रगड़ते ना, तो बुद्धि को पहले ज्ञान साबुन से रगड़ना पड़े बाबा, तो जितना उसको रगड़ते जाते हमारे दिल में हम चेक करें कि कोई देह भान तो नहीं है, कोई देह के संबंध संपर्क का भान तो नहीं है, कोई अंदर तो नहीं मेरे दिल में बैठा है, कोई देह की चीज तो नहीं, मैं आसक्ति तो नहीं है, मैं खा लूं ये चीज रख लूं ये कर लूं, दिल में कॉन्शियसनेस नहीं बैठी, उसको निकालो और ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा की गोद में हूं, जो होने वाला सबसे अच्छा, इसको लगातार अनुभव करें, मुरली के एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट को दिन में कितनी बार, 100 बार भी रिवाइज करें, अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, विजुलाइज रियलाइज ना, विजुलाइज इमेजिन करने की बात नहीं, सत्य है, सत्य को हमें अनुभव करना होता है, उसको इमेजिन नहीं करना होता, विजुलाइज नहीं करना होता, तो उसको जितना हम गहराई से करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती जाए, हमारे दिल में सिर्फ बाबा रहेगा। मैं कभी बाबा को बोलूं, बाबा मेरे दिल में ना देखो एक सिर्फ ही बैठा है, एक देहधारी बैठा है बस, कोई बात नहीं, आप साइड में बैठ जाओ ना आके, बाबा कहते मैं नहीं आता, आप कमरा पूरा खाली चाहिए मुझे ना, तो दिल रूपी कमरा पूरा खाली छोड़ो तो बाबा उसमें आके बैठ जाता है, और बाबा के साथ साथ एनर्जी भी आती है ना, वो सागर है ना, पावर हाउस है, तो मेरा विवेक कैसा हो जाता है, सत्य को प्रकटने शक्ति एकदम एक्यूरेट हो जाती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, दिव्य माने डिवाइन, जिसमें ज्ञान युक्त निर्णय शक्ति जिसे बुद्धि कहते हैं, और फिर चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंदमय हो जाता है, उससे मेरा संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप पिछले कल्प का उसकी मेमोरी जागृत हो जाती है, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण का मतलब ही क्या है, ब्राह्मणा बेहद, जिस जो अपनी बेहद की बुद्धि वाला, बेहद की बुद्धि वाला मनुष्य और जो अपने मन को मनमनाभव करने के कार्य में लगा हुआ है, ब्राह्मण है ना, बेहद की बुद्धि रख करके, जैसे ब्रह्मा माना बेहद की माँ और ब्राह्मण माना जो उसकी बेहद की बुद्धि है अर्थात इसमें हद नहीं, देह देह के संबंध संपर्क देह के स्वभाव संस्कार नहीं, आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा परमात्मा संबंध बेहद है, ड्रामा बेहद है। तो उसमें उसको बुद्धि में रख करके अपने मन में अब यह भरने की पुरुषार्थ में लगा रहता है, अपने मन को मनमना भाव करके लक्ष्मी नारायण के समान अपना पुरुषार्थ करता है, ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो कर करके वो उसके समान बनने के पुरुषार्थ में रहता है, देवता बनने के पुरुषार्थ में रहता है, फरिश्ता से देवता बनने के पुरुषार्थ में रहता है। तो जब हम ऐसे फिर जब हमारी हमारा जब ब्राह्मण स्वरूप की जब हमारी स्मृति जागृत फाइलें जागृत हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमें जब मुरली तब समझ में आने लगती है अच्छे से। आपने देखा होगा, आपने 10-10 बार मुरली सुनी होंगी, हम भी 7वीं 8वीं बार मुरली सुन रहे हैं, वही मुरलियां हैं 5-5। अब मुरली जो इस अब बैठ के समझ में आती है, अंदर जाती है, पहले कितनी जाती थी अब कितनी जाती है, अब बदल रही है, बुद्धि बदल गई ना, अब वो ब्राह्मण की स्मृतियां, संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की स्मृतियां खुल गई हैं, अब मुरली अंदर जा रही है, अब उसके आधार पर संकल्प चल रहे हैं, दिन रात वही मुरली अंदर बजती रहती है, सारा दिन मुरली अंदर बजती रहती है। इसलिए मैं तो मुरली जेब में रखता हूं, जो कोई पॉइंट मैं भूलता हूं तुरंत मुरली का पॉइंट निकाल के देख लेता हूं, कितना भी बिजी हूं, चाहे आईसीयू में क्यों ना हो, चाहे मैं जा रहा हूं हॉस्पिटल या घर में हूं कहीं भी हूं, तो मुरली मेरा जीवन का साथी होना चाहिए ना, मुरली ही मेरा मीत है, सच्चा सच्चा मीत कौन है, अभी मुरली ही मेरे जीवन, क्योंकि यही बाबा की शिक्षा है, श्रीमत है, डायरेक्शन है, सावधानी है ना? तो इसको सारा दिन बार बार बुद्धि में रिवाइज करते करते अब मेरे संकल्प इसके अनुसार चलने लगे हैं। तो संकल्प चलने से क्या होता है, मेरे हाइपोथैलेमस में उन केमिकल्स का निर्माण शुरू हो गया, एंडोर्फिन्स का निर्माण शुरू हो जाता है, एंडोर्फिन्स के नेचुरल पेन किलर होते हैं और आपको बहुत हल्केपन की फीलिंग कराते हैं, ऐसा लगता है आप उड़ रहे हैं, बहुत हल्कापन की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग होती है और एनर्जी, पुलिंग ऑफ एनर्जी, बहुत अंदर एनर्जी महसूस होती है, तो आपके एंडोर्फिन्स बढ़ने लगते हैं और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स चालू हो जाती है, पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है अंदर हाइपोथैलेमस। तो सारी दिमाग में भी रिलैक्सेशन, आंखों में भी रिलैक्सेशन, कानों में भी रिलैक्सेशन, मुंह में भी रिलैक्सेशन, है ना, सब जगह रिलैक्स्ड, हार्ट भी रिलैक्स, फेफड़े भी रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं कहीं पर भी, और हार्मोन्स भी बैलेंस में निकल रहे हैं, गले थायराइड हार्मोन भी बैलेंस में निकल रहा है, हड्डियों को ताकत देने वाला हार्मोन भी बैलेंस में निकल रहा है, पैनक्रियास से इंसुलिन भी बैलेंस में निकल रहा है, एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल भी बैलेंस में निकल रहा है, सारे हार्मोन, सातों ग्लैंड्स हमारी एक्यूरेट काम करती हैं। तो अगर हम सचमुच में इन जो बाबा के महावाक्यों की एक एक महावाक्य, कई लोग कहते हैं योग क्या है, हमें योग सिखाओ, योग कुछ भी नहीं है, मुरली के एक एक महावाक्य को अनुभव करना ही राजयोग है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बन जाना ही राजयोग है। कितनी वैरायटी का राजयोग हो गया है ना, सुबह से शाम तक एक लाइन को अनुभव करते रहो, उसमें जो बाबा ने कहा वैसा बनते जाओ, तो कितना राजयोग हो गया, और हमें कहीं राजयोग की सीखने की आवश्यकता है क्या, वैसा बन जाना ही राजयोग है। तो उसको हम जब ऐसे हमारे हर संकल्प उसके अनुसार चलेगा, थोड़ा भी हमने संकल्प मनमत या परमत पे चलाएगा तो जहर के समान काम करेगा, फिर असर नहीं होगा। तो बाबा और बाबा की मुरली के अलावा तीसरी कोई चीज जानी नहीं चाहिए हमारे जीवन में। तो ये जब आप करते हैं, मेरे को भी हार्ट की बीमारी थी है ना, मेरी तो हार्ट की दीवारें बहुत मोटी मोटी हो गई थी है ना, वो ठीक राजयोग से हुई, जो कि इम्पॉसिबल था, शायद मैं 97 में मुझे बताया था फरवरी में, कहा था मैक्सिमम 2 साल आप जी पाओगे मैक्सिमम, अभी 2019 हो गया, अभी मैं जिंदा हूं ना, 22 साल हो गए इस बात को। तो वो बीमारी ठीक कैसे हो गई, ऐसे हजारों लोगों की 9000 से ज्यादा पेशेंट दिल वाले, उनकी बीमारी कैसे ठीक हो गई, उनकी ब्लॉकेज कैसे खुल गए, इस तरह से खुले, क्योंकि जितना इस तरह से आप करोगे तो संकल्प परिवर्तन होते जाएंगे, फिर उस मुरली का बार बार रिविजन करते जाएंगे, रिपीट मनन करते जाएंगे, चिंतन करेंगे, तो भावना परिवर्तन हो जाएगी, फिर भावना हमारी जिससे चिंतन बाबा ने जो बाबा हमारी भावना चाहता है वैसी भावना बन जाएगी, शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी, जब शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे वाइब्रेशंस सारी दुनिया में जाने लगेंगे, फिर उसी भावना का मंथन करते जाएंगे कि कैसे मैं सारी दुनिया कल्याण करूं, कैसे मैं सबको सारा विश्व में हर आत्मा को संदेश पहुंच जाए बाबा का, वो कैसे होगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी वृत्ति बदल जाएगी, हमारे सबके प्रति रूहानी वृत्ति, आत्मिक वृत्ति, भाई भाई की वृत्ति हो जाएगी, जब भाई भाई की वृत्ति होगी तो फिर मुझे नए नए अनुभव होने लगेंगे, कैसे अनुभव, नए इंप्रेशन आने लगेंगे, नई आस्था, नए बिलीफ सिस्टम बन जाएंगे, पहले बिलीफ सिस्टम क्या है, शनिवार को ये नहीं करना, शुक्रवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना, है ना, ये ऐसे नहीं करना, ये इस दिन उद्घाटन नहीं करना, इस दिन वैसा नहीं करना, ये सब सारे बिलीफ, ये वास्तुकला, ये सब कला, वो कला, सब खत्म हो जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा, जब ऐसी रूहानी वृत्ति बन जाएगी तो सब में ही भला है, रूहानी दृष्टि बन जाएगी, फिर रूहानी वायुमंडल बन जाएगा, फिर उस रूहानी वायुमंडल के अंदर मेरे अंदर, मेरे अंदर, मेरे आसपास वायुमंडल बनेगा, प्लस मेरे अंदर वायुमंडल बनेगा। मतलब रूहानी वायुमंडल क्या होता है, ये सातों एनर्जी का भरपूर मेरे अंदर हो जाएगी, आसपास भी हो जाएगी, और मुझे हील करती रहेगी। मुझे कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, जब आप ऐसे बन जाएंगे तो 10 लाख आत्माएं जो राजयोग कर रही हैं, उन सबकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको टच करेंगी और आपकी बीमारी यूं ठीक हो जाएगी। करके देखो, है ना, आपके ऐसा विश्वास हो जाएगा बाबा मेरे साथ है, नया बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, बाबा हर समय मेरे साथ है, सचमुच फील होगा बाबा मेरे साथ है। और फिर आपका नए संस्कार बन जाएंगे, तो जब संस्कार बदल जाएंगे तो व्यवहार बदल जाएगा। अभी हमारा रूहानी व्यवहार हो जाएगा, रूहानी व्यवहार होते ही हमारा क्या होगा, रूहानी आहार हो जाएगा, वैष्णव आहार हो जाएगा। हमें पराठा पकौड़ा समोसा अच्छा नहीं लगेगा, ये रास्तिक आहार है, रास्तिक आहार से नींद आती है, आलस्य पैदा होता है। नंबर वन दुश्मन ब्राह्मणों को कौन है, आलस्य और अलबेलापन। पराठा पकौड़ा समोसा खा के फिर कहते हैं हमारा योग लगे, नहीं योग लगता है, नींद गहरी नहीं आती है, हमारा शुद्ध सात्विक आहार हो जाएगा। और फिर तामसिक आहार, है ना, जो तामसिक आहार, तो प्याज लहसुन तो आप जानते हैं, नॉनवेज तो आप जानते ही हैं, इवन चाय कॉफी भी, कभी एक आधी बार बीमारी में ले ली वो अलग बात है, पर रेगुलर चाय कॉफी में दो दो तीन तीन कप पियूं वो खत्म हो जाना चाहिए, अचार खाना बंद हो जाना चाहिए। तामसिक आहार क्या उत्तेजना पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, लाल मिर्ची गर्म मसाले बहुत खाना गर्मी पैदा करता है, अपने उत्तेजना पैदा करता है, फिर कोई योग लगे, योग लगेगा नहीं। हमारा भोजन एकदम शुद्ध सात्विक, आसक्ति वाला भोजन ना हो, मैं आसक्ति से ना खाऊं, सिर्फ जितना जरूरी है, दाल रोटी वो जरूरी खा लो, बाबा की याद में चबा चबा के खा लो, जल्दी जल्दी में नहीं खाओ, प्यार से खा लो, और फिर सैर करने का टाइम मिलेगा, शुद्ध सात्विक सैर, सातों गुणों का अभ्यास, बाबा से जुड़ करके सातों गुणों का अभ्यास करते हुए सैर करो, और नींद भी इतनी बढ़िया आएगी, चार सोए ऐसे सोए एक एक सेकंड, 10 सेकंड में नींद आ जाएगी, एकदम सूक्ष्म वेतन बाबा की गोद में जाके सो जाओगे। तो जब ऐसी नींद आएगी तो क्या होगा, सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैंने एक प्रैक्टिस करा के देखा है दिल वालों को भी, कि हम सोने के पहले लेटर लिखते हैं बाबा को, सोने के पहले रोज लेटर लिखते हैं, एक उसमें सारा अपने पर्सनल लेवल की सारी स्ट्रेस, जो भी टेंशन, मुझसे गलत संकल्प चले, गलत भावना, गलत देखा, गलत सुना, कोई बीमारी की चिंता है, कोई तकलीफ की चिंता है, अपनी पर्सनल, परिवार के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे, या आपके परिवार लौकिक परिवार वहां पे कुछ प्रॉब्लम टेंशन चल रही है वो लिखो, और फिर सेवा के लेवल पे, तीन लेवल पे एक बाबा को डिटेल लेटर लिखो, लिख के बाबा को एक्सेप्ट करो, बाबा मेरी ये तकलीफ है, साइन करो, बाबा को दे दो, फिर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर उसके बाद चार्ट भरो, घंटे घंटे याद का चार्ट भरो, 480 मिनट का हमारा टारगेट है 8 घंटे का, फिर धीरे धीरे अचीव हो जाएगा, और फिर मुरली पूरी पढ़ो सोने के पहले, और फिर 3 मिनट बाबा को याद करके सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाके सो जाओ, तो आप देखेंगे सुबह इतना बढ़िया टाइम पर उठेंगे, और 45 का 45 मिनट आप पूरा आनंद में जाएगा, अमृत वेला पावरफुल होगा। और आनंद में अगर अमृत वेला किया, आनंद की स्थिति का अनुभव किया, तो 18 हार्मोन्स बैलेंस में निकल आएंगे, हाइपोथैलेमस से 9, पिट्यूटरी से 8, पीनियल से 1, और 18 हार्मोन्स आनंद से निकलाए तो देखेंगे आपके पूरी सेल्स, पूरी बॉडी के हर सेल में जो भी बीमारी है मन तन के ठीक हो जाएगी, कम होने शुरू हो जाएगी। और फिर 8 बजे तक आप चुप रहें, मुरली का मनन चिंतन करेंगे, तो कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकल आएगा, और कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस में निकल आया तो आपको देखेंगे सारा दिन शांति, प्यार, खुशी बनी रहेगी, अटेंशन बना रहेगा। तो इस तरह से अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, अटेंशन माना मुरली का मनन चिंतन, मंथन, सिमरन करते रहे, और सोने के पहले वेंटिलेशन माना लेटर लिखना, चार्ट भरना, मुरली पढ़ के बाबा को याद करके सोचो। तो अगर ये चार नियम हम पक्के फॉलो करते जाएंगे तो यही है शुद्ध सात्विक, सॉरी स्वस्थ जीवन शैली, जिसके द्वारा आपके मन और तन की सारी बीमारियां आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, मन भी स्वस्थ और तन भी स्वस्थ हो जाएगा। ओम शांति। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। सभी अलर्ट होके बैठ जाए। शांति। मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। महसूस करें अपने दोनों मस्तक के दोनों भ्रुक्तों के मध्य, यहां से 2.5 इंच अंदर, ऊपर से 3 इंच नीचे, मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, परम पावन परम पिता परमात्मा शिव की संतान, मेरे बीठे शिव बाबा परम सत्य हैं, परम पावन हैं, परम शांत है, सदा ऐसा सोचता है। परम रूहानी प्रेम है, परम अतिंद्रिय सुख है, परम सर्वशक्तिवान है। ऐसे मेरे मीठे शिव बाबा मेरे मीठे प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहे हैं। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट जन्म की गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बैठे मेरे मीठे प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बुद्धि मन और संस्कार के मालिक हैं, उनकी दिल सदा सच्ची और साफ है, उसमें मेरे मीठे शिव बाबा विराजमान है। शिव बाबा सत्य की समझ के पावर हाउस हैं, पवित्रता के पावर हाउस हैं, शांति के पावर हाउस हैं, रूहानी प्रेम के पावर हाउस हैं, अतिंद्रिय सुख के पावर हाउस हैं, आनंद के पावर हाउस हैं, सर्वशक्तियों के पावर हाउस हैं। महसूस करते जाएं, ये मेरे हो गए मीठे बाप दादा, तो दिव्य बुद्धि रिपु लिफ्ट मुझ आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बैठे ऐसे मीठे बाप दादा की गोद में पहुंचा देती है। और बाबा मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, आओ मेरी गोद में समा जाओ। महसूस करो मैं आत्मा पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी चमकीली ड्रेस के साथ मीठे शिव बाबा के दिल रूपी सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में विराजमान हूं। बाप दादा मुझे बहुत ही मीठी दृष्टि से निहार रहे हैं, बाप दादा का हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करें, बाप दादा के नैनों से सातो चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं मुझ आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली होती जा रही हूं। महसूस करें परमात्मा बाप दादा के संग में मुझ आत्मा में सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, सत्य को परखने की शक्ति, महसूस करते जाएं गहराई से कैसे मेरा विवेक जागृत हो गया है। अब मैं रॉन्ग को रॉन्ग और राइट को राइट समझ सकता हूं, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, अब मेरी निर्णय करने की शक्ति में ये ज्ञान भर गया है, सत्य की समझ भर गई है, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, अर्थात बुद्धि को और मन को देह और देह की दुनिया के विस्तार से मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से हैं और ड्रामा से साक्षी दृष्टा हूं। इसको गहराई से अनुभव करें विस्तार सत्य ज्ञान सत्य की समझ में समा गया है। अब मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन परम धाम हृदय में बिंदी बाप से कंबाइंड स्थिति का अनुभव करें। मैं आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी से कंबाइंड हूं। महसूस करें कैसे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही है। स्वीट साइलेंस का अनुभव करें जिसमें कोई संकल्प नहीं, सर्वशक्तियों की अनुभूति मुझ आत्मा में समाती जा रही। मैं आत्मा सहन करने की शक्ति से भरपूर हो गई, समाने की शक्ति से भरपूर हूं। कोई भी समस्या का सामना करने की शक्ति से भरपूर हूं। सर्व को सहयोग करने के लिए तैयार। अब वापिस सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बाप के लव में लवलीन स्थिति का अनुभव करें। बाबा के साथ के अनुभव में समा जाए। महसूस करें, सर्व प्राप्ति संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का, संतुष्ट बनने का इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति को महसूस करें। बाप दादा के प्यार और दुलार को अनुभव करें, और बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं बच्चे सदा अमर भव। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, मैं आत्मा बाप दादा से मिला मना करके अपने पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी चमकीली ड्रेस के साथ अपने साकार शरीर में वापस आ रही पर ऐसी अवस्था में, साकार अवस्था में भी फरिश्ता स्थिति का, बाप दादा के साथ का अनुभव करते रहे। फिर वापिस सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएं, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे मां की पालना दे रहे हैं, आपके रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र मुझे दिया है, मुझे त्रिनेत्री बना दिया है, अर्थात सत्य की समझ से मैं हर कार्य करता हूं, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मुझे अब मिल गया है, शिक्षक के रूप में ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया है, से सृष्टि के आदि मध्यन का ज्ञान अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बना दिया है। सदगुरु के रूप में मुझे 63 जन्मों से के पाप कर्मों से मुक्ति का और जीवन मुक्ति का वरदान दे दिया है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में अनुभव करते रहे कैसे बाबा एक एक संबंध से मुझे पालना दे रहे हैं। बंधु के रूप में बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे अपने लौकिक और अलौकिक दोनों जिम्मेवारियों का बोझ मुझे दे दो। सच्चे दिल से बाबा को अपनी लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का बोझ मैं आत्मा उनको सौंप दे रही हूं। महसूस करें मैं आत्मा डबल लाइट हो गई। मैं सिर्फ निमित्त हूं, करण करावन हार शिव बाबा है, मैं सिर्फ करण हार हूं। मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं। सखा के रूप में शिव बाबा जो बातें हम किसी को भी बता नहीं सकते हैं, जाने अनजाने हमसे जो पाप कर्म हुए अभी तक बता दें, सब बातें शेयर करके हल्के हो जाती हूं। आप इस स्थिति का अनुभव करते रहें।